ओम शांति।
आज हम चर्चा करेंगे द लॉज ऑफ स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स।
स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स, वैसे हमें से सभी मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन अपनी डेली लाइफ में जरूर करते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, उसका एप्लीकेशन हर कोई करता है। हम बात कर रहे थे लॉज ऑफ स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स के बारे में। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 3+1 इक्वल्स टू हिना दीदी कितना होता है? लेकिन स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स में 3+1 इज इक्वल्स टू 0। हाउ, कोई बताएगा 3+1 इक्वल्स टू 0 कैसे? 3 इन द सेंस बॉडी प्लस माइंड प्लस इंटेलेक्ट, 1 यानी सुप्रीम सोल। जब हम तीन चीजों से उस परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो हम परफेक्ट बन जाते हैं, दैट इज 0। तो ये है स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। सेकेंड वन इज 1/0, ये कितना होता है कोई बताएगा? 1/0 इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। तो हम जब संपूर्ण आत्मिक रूप में टिक कर उस परमात्मा की याद में स्थिर हो जाते हैं तो हमें अनंत शक्तियां प्रवाहित होना शुरू हो जाती हैं। अब हम आगे बात करते हैं स्पिरिचुअल ज्योमेट्री के बारे में, जिसपे हम कॉनिक्स कुछ लेंगे और उनसे रिलेटेड योग के डिल्स क्या हो सकते हैं वो हम सीखेंगे। सबसे पहला होता है पॉइंट। पॉइंट में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं पॉइंट फॉर्म। परमधाम में जाना है, परमधाम में हम बाबा के साथ कंबाइंड हो सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज लाइन्स। जब हम दो पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो एक लाइन प्रोड्यूस होती है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे, शिव बाबा हमारे सर के ऊपर है और हम परम धाम में उनकी छत्र छाया में हैं और उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाती है। एंड थर्ड वन इज ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में हम ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आत्मा बेगुटी सिंहासन पर हूं और मन और बुद्धि मेरे दो मंत्री हैं। तो इस तरह आत्मा को टॉप वर्टेक्स पर रखेंगे और मन और बुद्धि को हम बेस बना देंगे। उसके थ्रू फिर अपनी शक्तियों से हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि मैं आत्मा अपनी शक्तियों द्वारा मन और बुद्धि को कंट्रोल कर रही हूँ। और एक प्रैक्टिस और भी हो सकती है, परमधाम में जाना है, परमधाम में वहां पे शिव बाबा को टॉप वर्टेक्स पे रखेंगे ट्राइंगल के, बेस में मम्मा बाबा को रखेंगे और उस बेस पे उसके मिड पॉइंट पे हमें टिकना है और उससे शक्तियों की किरणें जो निकलेंगी और उन शक्तियों की किरणों से हमें विजुलाइज करना है कि इससे प्रकृति के पांचों तत्व प्योर बन रहे हैं। नेक्स्ट है 4 स्क्वायर। स्क्वायर में हम 4 सब्जेक्ट ले स्क्वायर। अब स्क्वायर में 4 वर्टेक्स होते हैं तो हमारे भी 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो स्क्वायर के सेंटर पे खुद को विजुलाइज करना है कि हम उस सेंटर पर हैं और इन चारों सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ हमसे शक्तियों की किरणें उस सब्जेक्ट पे जा रही हैं और मैं आत्मा उसमें पावरफुल बनती जा रही हूँ। एंड फिफ्थ वन इज हम लेंगे पेंटागन। पेंटागन में हम रखेंगे 5 स्वरूपों को और उसके सेंटर पे परमात्मा शिव बाबा को और हम विजुलाइज करेंगे ये पेंटागन जो है मूव कर रहा है। तो एक एक स्वरूप चारों ओर घूम रहे हैं और बाबा की किरणें एक एक स्वरूप पर पड़ रही हैं। तो ये था स्पिरिचुअल ज्योमेट्री। हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ बिलीफ या लॉ ऑफ फेथ। बाबा के शब्दों में कहें निश्चय बुद्धि विजयंती। तो किसी भी कार्य को करने के लिए या लौकिक स्टडी हो या लौकिक में फेथ का होना बहुत जरूरी है और स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको फेथ नहीं है तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। वैसे भी बाबा ने मूल्यों में 4 तरह के निश्चय की बात कही है, स्व में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। अगर ये चारों निश्चय के फाउंडेशन पक्के हैं तो आपकी स्थिति अचल अडोल रहेगी। इनमें से अगर एक भी थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो आप हलचल में आ जाएंगे। इसलिए कहते भी हैं द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ फेथ। नो मैटर विच काइंड ऑफ योर फेथ इज यू गेट रिजल्ट्स। हमारा अंधविश्वास हो तो भी हमें रिजल्ट मिलता है। भक्ति मार्ग हम क्या करते थे, देवी देवताओं के सामने जाकर मन्नत मांगते थे या कुछ भी और वो चीजें पूरी हो जाती थी, वो एक फेथ होता था। तो ये फेथ जो है या जो जीवन का एक नियम है फेथ का, तो ये नहीं देखता कि ये अंधविश्वास है या आपका ये ट्रू फेथ है, वही आपको रिजल्ट देता है। सेकेंड वन इज गिविंग इज रिसीविंग। या बाबा कहते हैं देना ही लेना है। तो अभी हम क्या दे सकते हैं? हम इतनी सारी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो हम सबको दे सकते हैं और वो इम्पेरिशेबल हो? खुशी और दुआएं और तो और सबसे बड़ी बात यह है, गिविंग इज रिसीविंग के पीछे लॉ क्या है? जो चीजें आप दूसरों को देते हैं वो वापस मल्टीप्लाई होकर आपके पास आती हैं। इन केस किसी के पास पैसा है और वो उसको क्या कर रहा है, इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन नहीं होगा उसके पास, वो वापस वो फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान क्या करें, दूसरों को दें। और जो अभी हमने बताया, आप लोगों ने बताया, खुशी, प्यार, कंपैशन, दुआएं, ये तो ऐसी चीजें हैं जिसमें आपका कुछ कभी माइनस नहीं होता, ये ऐड ही होता है। तो इसलिए हमें इसलिए बाबा कहते हैं देना ही लेना है। एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा सभी ब्राह्मण आत्माओं को अच्छे से पता है, इसमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जैसा हम करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। तो इसमें एक रूल ये भी है, हम जब किसी के लिए अच्छा कार्य करते हैं तो उसके वो हमें उसके कॉन्सिक्वेंस में हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ थॉट के बारे में, ये एक तरफ सूक्ष्म है, जब हम किसी के प्रति अच्छे थॉट क्रिएट करते हैं तो और ये भी पॉसिबल है कि वो आत्मा हमारे लिए अच्छे थॉट क्रिएट करेगी। इसमें ज्यादा डीप में जाके हम आगे बढ़ते हैं। एंड द फोर्थ वन इज वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इस ईश्वरी परिवार का या इस ज्ञान का हमारा एक ही स्लोगन है, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। क्योंकि आज के डेट में दूसरों का परिवर्तन करना इजी है, इवन हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं या हमें क्या करना है, स्वपरिवर्तन करना है। और जब हम में खुद में परिवर्तन होगा तो हम दूसरों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप खुद को परिवर्तन करो, सारी दुनिया को नहीं देखो कौन क्या कर रहा है, आप बस खुद पर अटेंशन रखो। एंड द नेक्स्ट इज स्वराज अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी। यहां पर अगर हमने राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय नहीं पाई या हम में रूलिंग पावर नहीं आई, तो हम क्या ये पॉसिबल है हम सत्ययुग में राजाई पद पा सकेंगे? नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहां जितना समय आपने अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य किया होगा, जितनी स्थिति आपने अचल अटोल बनाई होगी, उतने पद तक उतने समय तक वहां भी आप राजाई पद पाएंगे। और हम करते क्या है, बाबा जब रूलिंग पावर और हैंडलिंग पावर की बात करते हैं, हम दूसरों पर रूल करते हैं, हमें जबकि खुद पर रूल करना होता है। कोई भी डिपार्टमेंट होता है, कोई भी संगठन हो, सपोज कोई सेवादारी आता है तो उस समय उसको कैसे डील करना है शायद हम भूल जाते हैं। हमें लगता है मैं जो बोलूं उसे वही करना चाहिए, डजंट मैटर, उसे पता नहीं कि सेवा कैसे करनी है, उसे समझ नहीं आ रहा है, बट जो बोल रहा हूं वो करो। तो उससे क्या दुआएं मिलती है? उसे दुआएं नहीं मिलती फिर, और ये सेवा भी यथार्थ रूप से सेवा भी नहीं हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्वराज अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी, हमें खुद पर राज करना है, दूसरों पर राज नहीं करना है, अपनी मन और बुद्धि पर राज करना है, अपने संस्कारों पर राज करना है, तब जाके हम विश्व में राज कर पाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज विद्धि से सिद्धि। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले नियम कानून को आप जान लो, इसके लॉज क्या है, कैसे करने हैं, उसके बाद उस काम के लिए आप एक बारी लग जाओ तो फिर सफलता पा करके ही वापस आप निकलो। इसलिए बाबा कहते हैं विधि से सिद्धि। इवन योग में भी बैठना है तो योग में हम डायरेक्ट प्राणायाम में जा सकते हैं, कई लोग कोशिश भी करते हैं तो फिर क्या होता है, वापस तो नीचे आ जाते हैं। इसलिए योग में भी बैठने का भी नियम है, आप बैठते हो तो आपको बोला जाता है क्रॉस लेग्ड होकर बैठो, किसी का आधार लेकर नहीं बैठो, बैठोगे तो किसी का सहारा लिया दीवार का तो भी नींद आएगी, हाँ धरती का तो लेते ही है तो क्रॉस ले। तो इसलिए और जब हम योग में बैठते हैं तो इसलिए सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, आत्मचिंतन करना, फिर खुद को महसूस करना, उसके बाद 5 रूपों का अभ्यास करना और फिर नए सिस्टम पर परमधाम जाना। इसीलिए हमारे योग में कहते भी हैं, योग अगर योग का सब्जेक्ट 100% माना जाए तो हमारा 80% एक घंटे के योग में सेल्फ रियलाइजेशन पे होना चाहिए, बाकी के 20% हमें परमधाम में जाकर योग करना है और उसमें भी फिर आके हमें शकास देनी है, तो इसको कंप्लीट योग माना जाएगा। और उसमें भी अगर हम शकास नहीं देते हैं तो कंप्लीट हमारा योग अधूरा ही है। इसलिए बाबा कहते हैं विधि से सिद्धि। एंड आगे है बाबा बोलते हैं फिर कदम में पदम। तो ऐसा हम क्या करें, ये नेक्स्ट लॉ है, कदम में पद्मों की कमाई जमा हो सके। कोई बताएगा ऐसा हम कौन सा कार्य करें, ऐसे कौन सी सेवा करें जिससे एक का कई गुना जमा हो जाए। जैसे ये क्लास या ग्रुप की क्लासेज जाती हैं, अब उस क्लास से अगर हजारों लोगों को फायदा हो गया, एक ऐसी कोई क्लास आ गई, सपोज प्योरिटी की क्लास आ गई, क्योंकि प्योरिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर कोई जूझ रहा है इस टाइम, और उस क्लास से अगर किसी ने और उससे कईयों को फायदा हुआ और कईयों ने अपनी प्योरिटी की धारणाएं बहुत अच्छी कर ली, उससे कितनी कमाई आपकी जमा होगी। या मनसा सेवा, बाबा कहते हैं अगर आप 5 मिनट भी ग्लोब पर टिक कर अच्छे से मनसा सेवा करते हैं तो उससे आपकी क्या होती है, कई जन्मों की या कई गुना प्रारब्ध जमा होती है। योग में उतनी हम कमाई नहीं कर पाते हैं जितने हम शकास देकर कमाई करते हैं। तो ये सारे, या फिर दुआएं देकर, जैसे आप सबने बताया, समर्पित बुद्धि होकर सेवा करके, जो भी पॉइंट्स आपने बताए, तो ये सारे तरीके हैं। वो डिपेंड करता है सेवा में भी त्याग कितना है। सेवा तो की मैंने, बहुत अच्छी सेवा की, जगदीश भाई ने ज्ञान निधि में फॉर्मूला बनाया है, मुझे फॉर्मूला तो याद नहीं है, उसमें लिखा है कौन से कर्म का कितना गुना हमें फल मिलता है। तो उन्होंने पूरा सो त्याग से रिलेटेड रहा है कि कर्म करने के बाद भी कितना हम अनासक्त रहे, कितने हमने लोगों से शेयर तो नहीं किया, मैंने उस भाई को कोर्स कराया, मैंने उसकी हेल्प किया, आज वो वहां पहुंच गया, वो बहन सेंटर में समर्पित हो गई, ये सब नहीं कि मैंने इतनों को आगे निकाला। तो कहने का मतलब ये है कि डिटैचमेंट होनी चाहिए सेवा की, फिर उसका वर्णन नहीं होना चाहिए बार बार, तो फिर उसका कई गुना जमा। अदरवाइज क्या होता है, जितने आप जमा करो शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, आप चाहते हो मुझे अप्रिशिएशन मिले, मैंने इतना किया है, लोगों को पता तो चलना चाहिए ना, क्यों चलना चाहिए, हमने सेवा की, बाबा देख रहे, बाकी हमें ये कोई संकल्प नहीं रखना है, इसलिए त्याग चाहिए। आगे है माइनस कैसे होता है, जैसे हमने सेवा की और उसके बाद हमने क्या किया, एक तरह से बार बार वर्णन किया तो भी माइनस हो गया, बाबा बोलते हैं, या फिर हम बार बार सबसे शेयर कर रहे हैं कि ये ऐसा और ऐसा किया वैसा किया, तो भी बाबा कहते हैं, या फिर हम चाहते हैं हमारी महिमा हो कि हमारा नाम मान शान हो, हमने ऐसा किया, तो भी क्या बाबा कहते हैं, कच्चा फल खा लिया, हाँ अभी सुख ले लिया। और कुछ ऐसे भी लॉज है, जैसे जिसके मन में जितने कम संकल्प होते हैं उसकी बुद्धि उसके उसका मन उतना ही पावरफुल माना जाता है। तो हम या आगे है एक दृढ़ता से सफलता। बाबा कहते हैं अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो सफलता समाई हुई है। और किसी भी कार्य करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, विल पावर चाहिए, अगर विल पावर है तो सफलता हमें मिलती ही है। और है कहते हैं कि अगर आपकी डिजायर्स जितने कम हैं उतनी ही आपकी लाइफ हैप्पी मानी जाती है, तो लेस डिजायर्स इक्वल्स टू हैप्पी लाइफ। या रिलेशनशिप की अगर हमें डेफिनेशन बतानी हो तो लेस एक्सपेक्टेशन प्लस मोर एक्सेप्टेंस लीड्स टू अ हैप्पी रिलेशनशिप। तो ये भी लॉज हैं कुछ। इसके अलावा अगर इक्वेशन ऑफ ब्राह्मण लाइफ बतानी हो, जनरल इक्वेशन ऑफ ब्राह्मण लाइफ क्या हो सकती है मैथमेटिकल टर्म में, जनरल इक्वेशन, आइडियल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई बताएगा, सुशील भाई जी आप सबको पता है बता दो लेकिन कोई बताएगा, एक हिंट देता हूँ, दिनचर्या से रिलेटेड है, अभी बताओ। हाँ, सबसे पहले है सेलिब्रेसी, ब्रह्मचर्य, उसके बाद योग, योग में हमारा दोनों योग नुमा शाम और अमृत वेला इंक्लूड है। थर्ड वन इज मुरली, उसके बाद है सेवा, फिर ब्रह्मा भोजन, फिर डेली चार्ट। अगर ये सारी लाइफ में है तो ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ ब्राह्मण लाइफ होती है। तो अगर आइडियल बनाना हो फिर क्या करेंगे? आइडियल इक्वेशन ऑफ ब्राह्मण लाइफ, आइडियल माना नहीं भी ना कर, कॉन्स्टेंट वर्ड यूज कर देंगे। हर एक जो नियम मर्यादाएं बताई सब में कॉन्स्टेंट अगर चलती है तो हम लीड करेंगे आइडियल इक्वेशन ऑफ ब्राह्मण लाइफ की ओर। आगे जो लॉ है, मन जीत सो जगत जीत, ये बहुत ही बड़ा पुरुषार्थ है कि हम मन पर विजय कैसे प्राप्त करें। इवन हम राजयोग का अभ्यास भी इसलिए करते हैं कि हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सके। तो बाबा कहते हैं अगर आपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है तो आप जगत जीत बन सकते हैं। और मन पर विजय प्राप्त करना यानी अपने संस्कारों पर विजय प्राप्त करना, अपने संकल्पों पर भी। संकल्पों इन द सेंस हमारे संकल्प भी कई टाइप के चलते हैं, तो उन संकल्पों को कैसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव में या वेस्ट को इम्पोर्टेंट में, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं मन मन जीत सो जगत जीत, क्योंकि 2500 वर्ष तक सतयुग त्रेता में मन क्या होता है, मन एक तरह से डोमिनेंट स्टेट में होता है और बुद्धि क्या होता है, हावी होती है मन पर। लेकिन जब हम द्वापर में आते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो मन हावी हो जाता है हम पर। तो इसलिए अभी हमें क्या करना है, मन पर विजय पानी। इसलिए कहते हैं मन जीत सो जगत जीत। एंड द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ टाइम। बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया है। वास्तव में बाबा से बड़ा सुप्रीम मैथमेटिशियन कोई नहीं है। सारा संसार बताता है कि अर्थ की एज इतनी है, यह संसार करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है। बाबा ने आकर तुरंत बोल दिया कि ड्रामा केवल 5000 वर्षों का है। इसमें भी बाबा ने बताया ड्रामा ये सृष्टि चक्र में भी चार पार्ट है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और इसमें सारे 1250 वर्ष के हैं। और भी बाबा ने बताया कि ड्रामा कल्प कल्प हूबहू रिपीट होता है। आज जो सीन रिपीट हो रही है आज से 5000 वर्ष बाद फिर वही रिपीट होगी। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ बैलेंस, और ये तो हो चुका है, जैसा चित्र वैसा चरित्र। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। कहते हैं कि हमारे विचार इमेज के फॉर्म में होते हैं, तो हम जैसा बार बार सोचते हैं तो हमारे एक तरह से थॉट प्रोसेस उसी तरह की हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसा चित्र वैसा चरित्र, जो चीज आप बार बार सोचेंगे उस तरह आप बन जाएंगे। हाँ, दृष्टि से सृष्टि सेम ही है, मतलब जैसे हमारा सोच होगा उस तरह हमें संसार दिखता है। इवन हम किसी से मिले, एक बार में हमने जज कर लिया, हमने किसी से ओम शांति बोला, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, नहीं वो भाई तो ऐसे ही है, बहुत रूड है, रिप्लाई भी नहीं करता। तो इसका मतलब ये जैसे हम है वैसे हम लोगों को देखते भी हैं, या जैसे आपका नजरिया होता है वैसे आपको ये सारा संसार नजर आता है। और जगदीश भाई ने भी एक फॉर्मूला बताया है, 3C इक्वल्स टू परफेक्शन। ये 3C क्या है? फर्स्ट सी इज कलेक्शन, हमें कलेक्शन करना है किन चीजों का, ज्ञान रत्नों का, एक्सपीरियंसेस का, अच्छी मेमोरीज का, और हाँ दुआओं का, विशेषताओं का, गुणों का, और तो हमें इन सबका कलेक्शन करना है। सेकेंड वन इज करेक्शन, करेक्शन किसका करना है, खुद का, अपनी कमी कमजोरियों का, दूसरों का करेक्शन नहीं करना है। एंड द थर्ड वन इज कनेक्शन, तो कनेक्शन किससे जोड़ना है, उस एक से। तो अगर ये 3 C हमारी लाइफ में होंगे तो हम परफेक्शन की ओर लीड करेंगे। ओम शांति। इस शरीर का नाम वैभव भाई है, हम लखनऊ से हैं। ग्लोरी संपदा धन, बाबा कहते हैं वैभव से दूर रहो। मुझे ज्ञान फेसबुक के थ्रू मिला 27 सितंबर 2014 में। एक चैट जिससे मेरी लाइफ चेंज कर दी। मेरा मकसद तो कोई नेक नहीं था, ऐसे ही कोई मुझे करके बहन मिले। तो यूजुअली जैसे हम चैट करते हैं कोई भी हो, तो मैंने पूछा हाय बोला, तो उन्होंने हेलो बोला, तो मैंने बोला हाय दिस इज वैभव फ्रॉम लखनऊ। तो उनका मैसेज आया यू वांट मी टू टेल मी माय एड्रेस, मैंने कहा यस। तो उन्होंने बोला परमधाम, मैं कहा ये कहा। तो ऐसे फिर बातें हुई, फिर उन्होंने बोला कि तो आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हो। सच में उस टाइम पे मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं शेयर ही करना चाहता था, और वो फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं किसी स्ट्रेंजर से मैंने वो बातें शेयर की। मैंने बोला हाँ मैंने इंटरव्यू दिया है और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ बैंक में, एक नंबर से रह गया, तो मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, मैं उस समय वो ओवर ईटिंग करता था, बहुत खाता था, अकेले रहता था, बना बना के खाता था। मैं समझ नहीं आ रहा है खा रहा हूँ फिर भी भूख लग रही है, तो मैंने शेयर किया ये प्रॉब्लम है। तो मेरे से पूछते हैं आप मेडिटेशन सीखना चाहते हो, मैंने कहा यस। तो उन्होंने मुझे सेंटर का एड्रेस दिया और फिर मैं गया। तो उन्होंने मेरे से बोला था कि आप 7 दिन जाना, उसके बाद जाना चाहे नहीं जाना। मैं कहा ठीक है। तो अच्छा, मेरा मेडिटेशन में इंटरेस्ट था, तो मैं क्या करता था, आंखें बंद करके ओम ओम करता था, मुझे लगता था शक्तियां फ्लो होंगी लेकिन फ्लो नहीं होती थी। तो फिर इसके बाद फिर मैं अगले दिन सेंटर गया और वहां पे ज्ञान लिया। फिर तो इस तरह फेसबुक ने लाइफ चेंज कर दी। ज्ञान में विश्वास कैसे हुआ, एक तरह से बोलूं फर्स्ट डे ही मैंने आत्मा का अभ्यास किया तो मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। 7 दिन में मैंने शिवानी बैंड की जो कमेंट्री है बिगनर्स वाली 5 मिनट वाली, मैं दिन भर प्रैक्टिस करता था। मेरा पीओ का पेपर होना था, बैंक पीओ का, प्रोविजनरी ऑफिसर का, तो मैं दिन भर मेडिटेशन करता था और पढ़ाई करता था। तो उसमें क्या हुआ, दिन भर प्रैक्टिस करते करते परमधाम जाना बड़ा ईजी हो गया। तो मैं उस समय बाबा का फॉर्म तो नहीं पता था, तो मैं ज्योति गुरु में याद करता था, एक ज्वाला है परमधाम में और मैं छोटी सी ज्वाला हूँ, तो उसकी शक्तियां मेरे में आती हैं तो मैं पावरफुल बन जाती हूँ। तो मैं ऐसे 5 दिन करता था, मतलब कंटिन्यू करना शुरू किया। शुरू शुरू में क्या होती थी, काफी प्रॉब्लम होती थी कि कंटिन्यू कैसे बैठना है। फिर एक बार ही किया फिर, लेकिन मुझे फील पहले दिन से ही होता था कि वास्तव में परमात्मा है। मुझे अभी वो दिन याद है, पहले दिन आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया तो मुझे दीदी, मेरा पेपर होना था इसलिए दीदी ने ड्रामानुसार 5 दिनों मुझे कोर्स करा दिया। तो सेकेंड दिन जब परमात्मा का किया तो पता चला शिव, क्योंकि मैं आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहता था इसलिए मुझे पता था परमात्मा निराकार है, बट नाम नहीं पता था, तो इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ एक्सेप्ट करने में। और हमने देखा बचपन से ही, हम वैसे लौकिक ब्राह्मण है, मेरे इष्ट श्री कृष्ण थे, तो जब भी कोई बात होती थी मैं बोलता था परम पिता परमेश्वर। तो मेरे को समझ नहीं आता था ये वर्ड कहाँ से आता है, लेकिन मैं बोलता था। और मुझे याद है जो दूसरे दिन उन्होंने परमात्मा का कोर्स कराया, तो मैं लेट के क्या प्रैक्टिस करता था, मैं आत्मा हूँ मेरे ऊपर शिव बाबा है, और वो जो मतलब इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी, मैं सोचता हूँ अभी वो अभ्यास क्यों नहीं होता। सुबह उठो तो भी बिल्कुल लाइट फील होता था, और तीसरे दिन कोर्स कराया ड्रामा का, तो मैं सबको देख रहा हूँ ये वर्ल्ड। और तो इस तरह हुआ। और सबसे बड़ी बात थी मेरा योग में इंटरेस्ट था, ज्ञान में उतना ज्यादा शुरू में नहीं था, मैं बस मेडिटेशन करता था। और मैं क्योंकि आईटी का था इसलिए मैं रिसर्च करता था, मुझे जो भी कमेंट्रीज मिलती थी मैं सुनता रहता था, और फिर वो दिन भर प्रैक्टिस करता रहता। और मेरे अंदर एक चीज अच्छी थी, इमेजिनेशन पावर, जिसको अभी विजुलाइजेशन पावर बोलते, वो बहुत अच्छी थी, तो मेरे लिए बहुत सहज हो गया। और मैं देखता था कि फिर इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस होते थे, मतलब शुरू से ही, क्योंकि मैं रात में 2-3 बजे तक सोता था, तो सुबह अमृत वेला वगैरह करना तो बहुत दूर की बात है, 8-9 बजे उठता था। तो फिर जब हम बैठते थे योग करने, कभी भी नहा धोकर 10-11 बजे बैठे, तो बहुत ही बॉडीलेस फील होता था। और एक बार इन दुमा शाम में क्या हुआ, मैं योग कर रहा था, शायद तब मुझे 20-25 दिन हो गए होंगे, तो मुझे बहुत ही बॉडीलेस फील हुआ, मैं बॉडी में हुई नहीं। तो मैं कोई मेडिटेशन म्यूजिक के थ्रू कर रहा था ईयरफोन लगा के, बस रो रहा हूँ, बैठे हैं, टाइम का पता नहीं, 1 घंटे बीत गया, लाइट और माइट है, तो मैं कहा ये क्या है। एक दिन अच्छा लगा, फिर मैं कहा चलो कल भी करते हैं, कल भी वैसे हुआ। तो धीरे धीरे ऐसे फिर लगा कि वास्तव में परमात्मा है। और फिर सबसे बात, जब सेंटर पे धीरे धीरे जाना शुरू किया तो मैं ऐसे ही यूज करता था, मैं वहां पे सेंटर थोड़ा दूर जगह होता था तो मुझे वो जगह पता नहीं होती थी, तो वहां गाड़ियां भी नहीं जाती थी, थोड़ा आउटर एरिया होता था। तो मैं बोलता था अगर तुम भगवान हो ना तो मेरी हेल्प करो, मुझे कोई ना कोई ऐसे संकल्प क्रिएट करता था, तुम अभी 10 मिनट के अंदर, बस तो आनी रही थी, अगर कोई मुझे लेकर नहीं जाता तो वापस चले जाऊंगा, देखता था कोई बाइक वाला आया और वो मुझे वहां तक छोड़ता था। फिर वो बोलता आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, मैंने कहा, बोली मेरे, वो बोलता मेरा मेरी भाभी भी जुड़े, तो मैं कहा ऐसे ही है। और ऐसा मतलब अगर इनकेस, क्योंकि हम प्रिपरेशन करते थे, मेरा सेंटर जाने का मन नहीं हुआ, सेंटर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था, यहाँ से मान के चलिए आप नक्की लेक में जो वो हाँ वो जो मजार है उतनी डिस्टेंस पे था, कभी अलग से आके आज सेंटर नहीं जाना। तो ये होता था धीरे धीरे लोग जानने में लगे थे, कुमार भाई थे, वैभव आ रहे हो तुम, देखा मैं कहता था तुम जाने, मतलब कभी मिस होने भी नहीं देते थे। मुझे याद है 2.5 साल हो गए ज्ञान पे, आज तक कभी मुरली नहीं मिस की, और 8 मास के बाद भी अमृत वेला भी मिस नहीं करता जानबूझकर, हो जाए तो अलग बात है, घर में कोई ज्ञान में नहीं है, लेकिन हाँ। थोड़ा बहुत होता है, बट घर वाले बहुत ही सपोर्टिव हैं, तो उनको थोड़ा बहुत डराता रहता हूँ मैं। और उनका क्या निश्चय है, मैं जब ज्ञान में आया सबसे बड़ी बात, वो लोग ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम देखते थे, सूरज भाई का समाधान, और सबसे ज्यादा रोल तो शिवानी बहन का रहा, उनकी अवेकनिंग देखते थे। और मैं जब वहां पे था तो उनको पता था मेरे हाथ का नहीं खाएगा, तो माँ ने बोला कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब वो बीके युगल की तरह रहते हैं, वो बहुत ही अच्छे सोल है। तो मैं जब भी जाता तो उनको मैं कमेंट्री के थ्रू योग कराता था, उससे मेरा खुद का भी होता था। और पापा को मैंने, पापा लॉयर है, तो उनको मैं सम्मान की प्रैक्टिस जाता था, वो सम्मान की प्रैक्टिस बहुत ही निश्चय से करते थे, उनको कहते थे वाह तो उनको क्या होता था, बड़ा मजा आता था, कहते थे यार बड़ा मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो जब पूजा करने बैठते कहीं मन इधर उधर भटकता है, तो मैं कहा योग करो, तो ऐसा। फिर वो उनका बहुत सहयोग रहा है, इवन मैं 25 का हूँ, 24 साल तक मुझे अर्निंग नहीं करनी पड़ी। मैं इवन जब भी मधुबन आना होता था तो मैं भंडारी में कहाँ से पैसे डालता, तो अपनी सेविंग के जितने भी होते थे, लेकिन वो घर से देते थे, तो बाबा की भंडारी में मधुबन स्पेशली डाल के आना, या सेंटर पे भी जब भी होता था तो वो मुझे सहयोग पूरा करते थे। मैं अभी तो नागपुर में जॉब करता हूँ, तो मैं रूम लेके अकेले रहता हूँ बाबा के साथ अकेले। हम तीन भाई हैं, कोई सिस्टर नहीं है, दो छोटे भाई हैं, बीच वाला आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, और सबसे छोटा अभी प्रिपरेशन कर रहा है वो पीजी की, तो सब घर से बाहर ही है। नहीं शादी तो नहीं करनी, शादी कर ली बाबा से, उनको उनको पता है ये बहुत जिद्दी है, उनको मेरा संस्कार पता है, अगर इसने कुछ सोच लिया तो ये करके ही रहेगा, ये पीछे नहीं हटेगा, तो वो मेरे को फोर्स नहीं कर सकते। हाँ वो कहते हैं लोग क्या कहेंगे, तो एक्चुअली उनको लगता है ना कि हम उसको समझा नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे अच्छी बात क्या, मेरे फादर बहुत ही वो सुलझे हुए इंसान है, वो कहते हैं ठीक है बेटा जो तेरा है मैं तू कर, माँ का क्या होता है बीच बीच में मोह जाग जाता है तो रोना शुरू कर देती, तो इसलिए थोड़ा सा डिटैच रहना पड़ता है, मैं जल्दी उन्हें कॉल नहीं करता। हाँ उनका आता है तो मैं जरूर आधे घंटे फिर बात करता हूँ, जिससे उनको ये ना लगे कि मेरा बेटा बिल्कुल वैसा हो गया। नहीं अपना पर्सनल तो वैसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत कमी कमजोरियां सब में होती है, जैसे फीलिंग आना, और स्पेशली जब मधुबन में आओ, कभी बचपन से ऐसी फैमिली में जन्म हुआ जहाँ कोई फिजिकल सेवा नहीं की तो यहाँ आके फिजिकल सेवा मिलना, तो उसको भी एक्सेप्ट किया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बाकी कोई ज्यादा विघ्न बाधा नहीं है। अच्छा मेरा क्या है कि हमने शुरू से एक चीज पक्का किया था ज्ञान में आने के बाद, कि मुझे बाबा से सारे संबंध जोड़ने हैं। मैंने कहीं सुना था अगर आपको कुमार जीवन सेफ रखना है तो आपको बाबा को साजन बनाना पड़ेगा, और लग बाई चांस ऐसा हुआ, हमारे सेंटर पे एक बारी समर्पण समारोह हुआ, तो एंगेजमेंट भी बाबा से हो गई, सात फेरे भी ले लिए, उसका मैंने क्या देखा, नेक्स्ट डे इनकेस ऑटो में कहीं जा रहे हैं कोई बहन सामने है, उस पर दृष्टि पड़ी तो बाबा नजर आता था उसकी भ्रिकुटी में, तो लगता था वो बाबा देखा। और जिस दिन वो समारोह हुआ उसके नेक्स्ट डे मुरली क्लास में दीदी ने पूछा किस किस की शादी हुई है, मैं सबसे आगे बैठता था, मैंने हाथ उठाया, तो दीदी मेरी तरफ देखी, मैं ब्लश को समझ नहीं आया मैं ब्लश क्यों कर रहा था, तो ऐसे ही था, तो ऐसा। बट आई फील सो लकी, ढाई साल में काफी महीने, मैं कहूँ 4-5 महीने मधुबन में रहने का चांस मिला, एक फर्स्ट ईयर में ही मैंने 3 बार बाबा मिलन किया था, और 1.5 साल में मैंने मेडिकल विंग में 1 महीने सेवा दी थी, और इसके इस बार भी 3 बार, तीसरा वाला अव्यक्त रहा, तो इस तरह 2.5 साल में 5 बार ही मिलन हो गए। और मेरा ये शायद 2 महीने मैंने अभी शांतिवन में सेवा दी निर्विघ्न रूप से, और अभी यहाँ भी 1 मास रहूंगा, तो ये मेरे लिए काफी मैटर का। यहाँ सबसे पहले तो टोली किचन में था, फिर बड़े भंडारे में, वैसे मजा दोनों जगह आती थी, मजा आता था और सबसे अच्छा क्या लगता था, वहां पे स्पीड है, हमने क्या देखा, अगर आप ब्रेन वाली सेवा करते हो तो 12 घंटे बैठने हैं, हम बैठ रहे हैं सिस्टम पर, सेवा कुछ भी नहीं है, देख रहे हैं लोगों को, वहां पे क्या है टाइम फिक्स है, टाइम स्लॉट में आपको इतनी देर करना है, वहां पे इंटेंसिटी चाहिए, जैसे भंडारे में आपकी स्पीड चाहिए, मेरी स्पीड नहीं थी, मैं क्या भाई साहब मेरे से नहीं हो पाएगा मेरी स्पीड नहीं है, तो मैं चुपचाप वहां चले आया, मैंने सेवा शिफ्ट कर ली, फिर मैंने टोली किचन में की, हाँ मजा आता था, कभी कभार बर्तन भी धुलो तो देवान खत्म। अच्छा मेरे लिए सबसे बड़ा पेपर क्या रहा, हम शांतिवन में थे तो अकोमोडेशन ऑफिस में थे, तो वहां अच्छी अच्छी सेवाएं हमें मिली, तो वहाँ पे हम अकोमोडेशन अच्छी सेवा इन द सेंस थोड़ी ऑफिशियल टाइप की सेवा है, तो लगता है कि हम जो पढ़े लिखे हैं वो यूज हो रही है। लेकिन मजा तब आता है जब जो जो आपका फील्ड नहीं है उसमें आपको सेवा करना, तो वहां पे क्या कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करने का चांस मिलता है। तो ऐसा रहा, तो यहाँ पेपर ऐसा आया मेरे को पट पे सोना पड़ा, तो कभी तो सोया नहीं, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट किया। मैंने वहां पे देखा कि पॉजिटिव क्या हो सकता है, तो पट पे देखा वहां फैन था, उसके नीचे हम सो रहे हैं, किसी का आना जाना नहीं होगा, और पट पे मैंने देखा वो वहां के लोग काफी देही अभिमानी होते हैं, बड़े डाउन टू अर्थ पर ही सोएंगे तो जमीन से जुड़े, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और कुछ यही था कि हमने बस एक चीज पक्की कर ली थी कि ज्ञान में आने के बाद बाबा मिल गया, और बाबा के लिए बहुत ही खींच, स्पेशली मधुबन के लिए, जब भी 8-9 महीने वहां हो जाते हैं तो मन करता मधुबन जाके बैठो, वहां पे रहो कुछ टाइम, तपस्या करो, फिर वापस आओ। और अच्छी बात ये, बाबा ने मुझे फेसबुक से मेरा जन्म हुआ, 8 मास के बाद हम दूसरों को ऑनलाइन कोर्स करा रहे थे, तो जो व्हाट्सएप पर सेवा शुरू हुई थी ऑनलाइन कोर्स की, हम लोगों ने ही शुरू की थी, वो संतोष भाई एंड हमारी पूरी टीम थी। सबसे अच्छा क्या रहा, बाबा यूज कैसे करता मैंने देखा, 8 मास के बच्चे हमें खुद भी पता नहीं, ना मेरे पास बुक्स थी उस समय, मैं बस वही राजयोग मेडिटेशन, मैंने शिवानी बहन के जो पूरे प्रोग्राम थे तो मैं जब पढ़ता था दिन भर वो सुनकर पूरा मैंने क्लियर कर लिया था, और उसमें भी कोई पूछे आत्मा मेल है या फीमेल तो मैं खुद कंफ्यूज क्या रिप्लाई करूं उस टाइम पे, और उसमें तो ऐसे क्या हुआ, मैं देखता था कि जो आंसर मुझे नहीं आते थे वो उस टाइम पे, क्योंकि रियल टाइम बेसिस पे आंसर करना होता है, उसमें कुछ सिस्टमेटिक नहीं होता, किसी ने पूछा आपको तुरंत आंसर करना है और ग्रुप में ही, और नहीं किया तो वो भी आपके लिए एक तरह से ये होता है ना, इनको खुद नहीं पता, तो वो बाबा कैसे करा लेता था मुझे भी समझ नहीं आता था, तो इस तरह से वो पार चला। तो मैंने 1-1.5 साल तक वो सेवा की, उसके बाद मुझे लगा अभी इन सबसे थोड़ा उठकर पुरुषार्थ करने की जरूरत है, तो फिर मेनली मैंने फिर उसमें जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं एज अ मेंटर वर्क करता हूँ, मैं अभी इंग्लिश कोर्स का निमित्त हूँ, तो उसमें क्या होती है उसमें कई लोगों से इंटरेक्शन करने का चांस, जैसे इंग्लिश में कई सारे सेलिब्रिटीज भी कोर्स करते हैं, जैसे खुशी खान है जो साउदर्न इंडिया में ये लोग एक्ट करते हैं, या फिर और भी बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट, तो उनको हम लोग गुप्त रखकर फिर कोर्स कराते हैं, और इस तरह ये सेवा चल रही है। लेकिन अभी मैंने अपने आप को इन सबसे डिटैच कर लिया, मेरा मेनली पुरुषार्थ है खुद को परिवर्तन करने में ही लगा हूँ। हाँ, मुझे एक बात यही कहनी है कि स्पेशली कुमार और कुमारी के लिए, हमें बाबा से अगर हमने साजन का संबंध नहीं जोड़ा तो बिल्कुल आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, इसलिए साजन वाला संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। मैंने देखा बाबा आपको कितना प्रोटेक्ट करता है, ये जो संबंध है मात पिता सदगुरु तो है, मन और बुद्धि से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि मैं आत्मा उस परमात्मा की सजनी हूँ, जैसे एक शादी होता है तो एक तरह से डिवोशन होता है, जैसे नारी का पतिव्रता होती है या पति पत्नी व्रत होता है, तो वैसे ही हमें ये एक्सेप्ट करना होता है कि एक बाबा दूसरा न कोई, अब जीवन उसको समर्पित कर दिया है। और मैंने बाहर देखा कि बाबा जब मुरली चलाते थे कि अगर तुम बाहर भी रहते हो तो तुम समझो बाबा की भंडारी से खाते हो, तो मैंने वो पूरा एक्सपीरियंस किया, बाहर भी रह के अगर आप पुरुषार्थ करते हो तो आपको यही लगेगा मुरली मेरे लिए चल रही, कहीं ना कहीं बाबा आपसे प्रैक्टिकल करा लेता है। इस अलौकिक जीवन या ईश्वरीय जीवन में हमें बाबा से सारे संबंधों की अनुभूति करना, और मोस्टली टाइम मुझे क्या अच्छा लगता है, योग में बिताना जितना भी ज्यादा टाइम हो सके, क्योंकि उससे ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना है उसके बाद भी, क्योंकि जितना जितना आपका योग बढ़ता जाएगा ना उतने आपके पेपर्स भी आते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या, अगर योग है तो फिर उसका सोल्यूशन मिल जाता है। मैंने एक चीज नोटिस की है, योगी आत्मा को हर जगह सहयोग मिलता है, ऐसा विघ्न तो आते ही है लेकिन ऐसा नहीं होगा उसको सहयोग नहीं मिलेगा, उसको सहयोग हर जगह मिलेगा, तो ऐसा निश्चय की परीक्षा हर जगह होती है, हर दिन करवा चौथी है उनकी याद में ही खाते हैं। ओम शांति।